ಪಣಿ ಅಕೋವಿದಾ ಸ್ತಬ್ಧ ಮೂರ್ಖ ಪಂಡಿತ ಮಾನಿನಹ ವದಂತಿ ಚಾಟುಕಾನ್ ಮೂಢ ಯಯಾ ಮಾಧ್ವ್ಯಾ ಗಿರೋತ್ಸುಕ. ಕಹತೆ ಜೊ ಕರ್ಮ ಕೆ ತತ್ವ ಕೋ ನೀ ಜಾನ್ನೆ ವಾಲೆ ಮೂರ್ಖ ಲೋಗ ಹೇ ವೋ ಕೇವಲ ಚಿಕನಿ ಚುಪಡಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೆ ಫಸ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ಪರ್ ಕ್ರೋಧ ಆತಾ ಹೇ, ದೂಸರೆ ಲೋಗೋ ಕಿ ವೇ ಹಂಸಿ ಉಡಾತೆ ಹೇ, ಸತ್ಪುರುಷೋ ಕಾ ಐಸೆ ಲೋಗ ಅಪಮಾನ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ಘರ ಗೃಹಸ್ಥ ಕಾ ಜೊ ಸಂಯೋಗ ಜನ ಸುಖ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಭೀ ವೇ ಸುಖ ಮಾನತೆ ಹೇ. ವೇ ದೇಖತೆ ಹೇ ಕಿ ನಹೀ ವೇದೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೀ ಹಿಂಸಾ ಬತಾಯಿ ಹೇ. ಅರೆ ನಹೀ ವೇದೋ ಮೇ ಜೊ ಹಿಂಸಾ ಬತಾಯಿ ವೋ ಹಿಂಸಾ ಕಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬತಾಯಾ ಹೇ. ಪಶು ರಾಲಬನಂ ಹಿಂಸಾ, ವಹ ಹಿಂಸಾ ಕಾ ಇತನೆ ರೂಪ ಹೇ ಶಸ್ತ್ರ ಸೆ ಛೂ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ ಉಸ್ಕಾ ಪ್ರಾಣ ಲೇವೆ ಯೇ ನಹೀ ಹೇ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಸಂತಾನ ಹೋ ಜಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೇ ಫಿರ್ ಅಪನೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಕೋ ಬದಲ್ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಮದ್ಯ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಭೀ ಕೇವಲ ವಹಾ ಕೋಯಿ ಬತಾಯಾ ಸ್ವರೂಪ ಕೇವಲ ಸೂಮ್ ಕರ್ಕೆ ಛೋಡ್ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಇನ್ಮೇ ಕಭಿ ಭೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಹೀ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಲೋಗೋ ನೆ ಅರ್ಥ ಕಾ ಅನರ್ಥ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೇ. ಔರ್ ವೇ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಅಂದರ್ ಪಶುವೋ ಕಿ ಹಿಂಸಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ವೇದ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಕೆ ಬಹಾನೆ ಸೆ ತರಹ ತರಹ ಸೆ ಪಾಪ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಪಶುನ್ ದುಹ್ಯಂತಿ ವಿಶ್ರಬ್ಧಾ ಪ್ರೀತ್ಯ ಖಾದಂತಿ ತೇಜತಾನ್. ವೇ ಪಶು ಮರಣೆ ಕೆ ಬಾದ ಅಪ್ನಾ ಬದಲಾ ಲೇತೆ ಹೇ ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ಖಾತೆ ಹೇ. ಕಹನೆ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಹೇ ಕಿ ಜೊ ವಾಸುದೇವ್ ಸೆ ವಿಮುಖ ರಹತೆ ಹೇ ರಾಜನ್, ವೇ ಸಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ನರಕೋ ಕೋ ಭೋಗತೆ ಹೇ. ರಾಜಾ ನೆ ಅಬ್ ಏಕ್ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಶ್ನ ಔರ್ ಕಿಯಾ ಹೇ ಕಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿಸ್ ಕಿಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಕೈಸಾ ಕೈಸಾ ರೂಪ ರಂಗ ಬನಾತೆ ಜರಾ ಬತಾಯಿಯೇ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಅಬ್ ಯೇ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ ಭಜನ್ ಜಿ ದೇ ರಹೇ ಹೇ. ಯೇ ನವಾ ಪ್ರಶ್ನ ಹೇ, ದೇಖೋ ನೋ ಹಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಔರ್ ನೋ ಹಿ ಉತ್ತರ್, ನೋ ಹಿ ಪ್ರಶ್ನ, ಔರ್ ಸಂಖ್ಯಾವೋ ಮೇ ಭೀ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ನೋ, ಔರ್ ನೋ ಕೋ ಕಿತನೆ ಭೀ ಸಂಖ್ಯಾ ಕರ್ ದೋ ಆಗೆ ನೋ, ಯೇ ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೇ. ಇಸ್ಲಿಯ ನೋ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕಾ ಜೊ ಆ ಸಂವಾದ ಹೋ ರಹಾ ಹೇ, ಯೇ ಸಂವಾದ ವಾಸ್ತವ ಮೇ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೇ, ಔರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಸ್ಮೇ ಬಾತೇ ಆ ಜಾತಿ ಹೇ. ಅಬ್ ಕರ್ಭಾಜನ್ ಉತ್ತರ ದೇ ರಹೇ ಹೇ ಕಿ ದೇಖೋ ಯೂ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕೋಯಿ ವರ್ಣ ನಹೀ ಹೇ, ಕೋಯಿ ಆಕೃತಿ ನಹೀ ಹೇ. ಫಿರ್ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಚಾರೋ ಯುಗೋ ಮೇ ಅಲಗ ಅಲಗ ವರ್ಣ ಸೆ ಅಲಗ ಅಲಗ ಆಕೃತಿ ಸೆ ಭಗವಾನ್ ದಿಖಾಯಿ ದೇತೆ ಹೇ, ಅಲಗ ಅಲಗ ವಿಧಿ ಸೆ ಉನ್ಕಿ ಉಪಾಸನಾ ಹೋತಿ ಹೇ. ಸತ್ಯೋ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭಗವಾನ್ ಸಫೇದ ರಹತೆ ಹೇ, ಚಾರ್ ಉನ್ಕಿ ಭುಜಾ ರಹತಿ ಹೇ, ಜಟಾವೋ ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ವಲ್ಕಲ್ ವಸ್ತ್ರ ಪಹನ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ್ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಔರ್ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಮನುಷ್ಯ ಬಹುತ್ ಶಾಂತ ರಹತೆ ಹೇ. ವೇ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ತಪಸ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಹಂಸ ಹೇ, ಸುಪರ್ಣ ಹೇ, ವೈಕುಂಠ ಹೇ, ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ರಹತೆ ಹೇ. ಜಬ್ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಆತಾ ಹೇ ತಬ್ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಲಾಲ್ ವರ್ಣ ಆತಾ ಹೇ, ತೋ ಭಗವಾನ್ ಚಾರ್ ಭುಜಾ ಸೆ ರಹತೆ ಹೇ. ಹಿರಣ್ಯ ಕೇಶ ಸ್ತ್ರೈಯಾತ್ಮ ಸುಖ ಸ್ರವಾದ್ಯುಪಲಕ್ಷಣ, ಯಜ್ಞ ಕಿ ವಸ್ತುವೋ ಕೋ ವೋ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೋಗ್ ವೇದತ್ರಯಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಯಜ್ಞ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ವಿಷ್ಣು ಹೇ, ಯಜ್ಞ ಹೇ, ಪ್ರಶ್ನಿ ಗರ್ಭ ಹೇ, ಯೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ರಹತೆ ಹೇ. ದ್ವಾಪರ ಮೇ ಆತೆ ಆತೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣ ವಾಲೆ ಹೋತೆ ಹೇ, ಪೀಲಾ ವಸ್ತ್ರ ಪಹನ್ತೆ ಹೇ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆದಿ ಸೆ ವೇ ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಆದಿ ಚಿಹ್ನೋ ಸೆ ಸುಶೋಭಿತ ಹೋತೆ ಹೇ. ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾರಾಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಇನ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೋತಾ ಹೇ. ಮಹಾರಾಜ ಉಪಲಕ್ಷಣಂ ರಾಜಾ ಕೆ ಸಮಾನ ಯೇ ಅಪ್ನೆ ಶೃಂಗಾರ ಕೋ ಧಾರಣ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಔರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಆಪ್ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಪ್ರಜಾ ಉನ್ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಹೇ. ನಾರಾಯಣ ರಿಷಭ ಋಷಿ ಪುರುಷ ಯೇ ಇನ್ಕೆ ನಾಮ ರಹತೆ ಹೇ. ಔರ್ ದ್ವಾಪರ ಕೆ ಬಾದ ಅಬ್ ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಬದಲಿಯ ಬತಾತೆ ಹೇ ಕಿ ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭಗವಾನ್ ತ್ವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣ ರಹತೆ ಹೇ, ಜೈಸೆ ಮಣಿ ಕಿ ಶ್ಯಾಮತಾ ರಹತಿ ಹೇ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾಕಾಲೀನ ಮೇಘ ಕೆ ಸಮಾನ ಶ್ಯಾಮತಾ ರಹತಿ ಹೇ, ಐಸಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ವಾಪರ್ ಶ್ಯಾಮತಾ ರಹತಿ ಹೇ. ಯಜ್ಞೋ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೇ, ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣಾರ್ವಿಂದೋ ಮೇ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕಿ ಯೇ ಚರಣಾರ್ವಿಂದ ಸಬ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಧ್ಯೇಯ ಹೇ, ತೀರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಹೇ. ಶಿವ ಔರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೀ ಇನ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಇನ್ಕೆ ಶರಣಾಗತೋ ಕೆ ಸಾರೆ ದೋಷೋ ಕೋ ದೂರ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೇ. ಸಂಸಾರ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜಹಾಜ್ ಹೇ, ಔರ್ ಯೇ ಭಗವಾನ್ ದುಸ್ತ್ಯಜ ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಸೆ ಛೋಡ್ ಕರ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಚಲೆ ಗಯೆ. ವೇ ಭಗವಾನ್ ಮಾಯಾ ಸೆ ಮೃಗ ಬನೆ ವೇ ಕೋ ಜಾನ್ ರಹೇ ಥೇ ರಾಕ್ಷಸ ಕೋ ಮಾರೀಚ ಕೋ, ಫಿರ್ ಭೀ ವೇ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತ ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೀತಾ ಕಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ ಪೀಚೆ ಪೀಚೆ ಗಯೆ ಹೇ. ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣಾರ್ವಿಂದ ಕೋ ಹಮ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಯುಗ ಯುಗ ಕೆ ಅಂದರ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಸ್ತುತಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ದೇಖೋ ರಾಜನ್ ಯೇ ಕಲಿಯುಗ ಹೇ, ಇಸ್ಕೋ ಸಾರಗ್ರಾಹಿ ಲೋಗೋ ನೆ ಬಹುತ್ ಊಂಚಾ ಮಾನಾ ಹೇ, ಕ್ಯೋಕಿ ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಅಂದರ್ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಉಪಾಯ ಕರ್ನೆ ಬಡೆ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೇ. ಕೇವಲ ಏಕ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಅಪ್ನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ಕೆ ವೇ ಲೋಗ್ ತರ್ ಜಾತೆ ಹೇ. ವೇ ಲೋಗ್ ಬಡೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೇ ಜೋ ಯಹಾ ಕಲಿಯುಗ ಕೆ ಅಂದರ್ ಆಕರ್ ಜನ್ಮ ಲೇತೆ ಹೇ. जन्म लेकर के भगवान का नाम लिया करते हैं। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण कृत्यादि सत्यादि युगों के अंदर पैदा होने वाली प्रजा भी इच्छा करती है कि अरे कलयुग में चले जाते तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग के अंदर द्रविड़ देश है, ताम्रपर्णी नदी है, कृतमाला नदी है, नदी है, कावेरी है, ऐसी ऐसी महानदियों का हम जल पिए और वहां पर जल पिए करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपना कल्याण कर सकते हैं। देखो राजन, जो भगवान के लिए सर्वात्म भाव से समर्पित हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए न तो उनके ऊपर देवताओं का ऋण रहता है, न उनके ऊपर ऋषियों का ऋण रहता है, न और किसी प्राणी का ऋण रहता है, न मनुष्यों का ऋण रहता है, न पितरों का ऋण रहता है, किसी का भी उस पर ऋण नहीं रहता जो भगवान के शरण हो जाता है, क्योंकि उसके मन से सब प्रकार से भेदभाव कर्म वासना नष्ट हो जाती है। और जो भगवान के शरण हो जाता है उसका भगवान के यहां क्या होता है कि भाई ऐसे भक्त के द्वारा कि जो भगवान के चरणों का शरण हो गया, ऐसे भक्त के द्वारा यदि कभी किसी प्रकार, पहली बात तो कोई पाप होता ही नहीं, पाप कर सकता ही नहीं, न तो वो पाप करता है न उसकी पाप में रुचि है, लेकिन अनजाने में यदि किसी प्रकार से उसके द्वारा पाप हो भी जाए तो भगवान उसके पाप को बहुत जल्दी ही नष्ट कर दिया करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। नारद जी कहने लगे, वसुदेव जी, ये भागवत धर्म के विषय में हमने आपको ऋषियों का संवाद सुनाया है, ऋषियों ने 9 प्रश्नों का उत्तर दिया और देखते देखते ही वे अदृश्य हो गए, वही आपको हमने सुना दिया है। इसका फल ये होता है कि जो इसको सुनता है वह संसार से पार हो जाता है, निसंग हो जाता है। आप तो महाराज बड़े भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण को आपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, आपने इनका दर्शन किया है, छाती से लगाया है, इनकी बात सुनी है, आपने इतना स्नेह किया है, इसलिए आपके कल्याण में कोई कमी नहीं है। अरे शिशुपाल, पौंड्र, साल्व और दूसरे नाना प्रकार के पापी लोगों ने युद्ध के अंदर इनके दर्शन किए, उनका ही कल्याण हो गया, तो फिर आपके कल्याण में तो कोई संदेह की बात है ही नहीं। इसलिए आप इनको केवल अपना बेटा ही मत मानो, ये सबके आत्मा है, सबके स्वामी है, केवल माया से मनुष्य बने हुए हैं, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए भगवान यहां आए हैं और अवतार लेकर के अपने यश के द्वारा, अपनी कीर्ति के द्वारा सारे संसार के मैल को, पाप को ये दूर कर देने वाले हैं। इस बात को सुनकर के वसुदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, देवकी जी भी बड़ी प्रसन्न हुई और ये परम इतिहास है, ये इतिहास हमने आपको सुनाया है। इस इतिहास को जो सुनता है ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी हो ही जाता है।
भगवान की कृपा अपरंपार है, वे अपनी कृपा के वशीभूत होकर ही जीवानुग्रह का संकल्प लेकर अवतार लेते हैं और हम जैसे जीवों के जन्म जन्मांतर के पापों को, मैलों को धो डालते हैं। भगवान द्वारिका में विराजमान हैं, भगवान के दर्शनों के लिए संत महात्मा आते रहते हैं, तदंतर्गत नारद जी का और वसुदेव जी महाराज का मिलना हुआ। नारद जी ने वसुदेव जी के कहने पर भागवत धर्म बताया, जिसके अंतर्गत 9 योगेश्वरों का संवाद महाराज निमि के साथ हुआ, उसका प्रकरण बताया। यह श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है और 11वां स्कंद केवल मुक्ति के लिए है, अर्थात जो हमारा स्वरूप नहीं है उसे हमने गलती से अपना स्वरूप मान लिया, उस गलती का त्याग कर देने का नाम भागवत के अनुसार मुक्ति है। उसी मुक्ति स्कंद के अंतर्गत अब सुखदेव जी महाराज आगे की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान द्वारिका में विराजमान है, ब्रह्मा देवताओं के साथ, शंकर के साथ और दूसरे प्रजापतियों के साथ द्वारिका के लिए रवाना हुए। इंद्र है वो मरुदगणों के साथ रवाना हुए। बड़े बड़े संत महात्मा वे भी द्वारिका में आए और सब के सब आकर भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किए हैं। कैसा दिव्य भगवान का बाह्य रूप है और कैसा ही भगवान का भीतर का भाव है। उन साहब ने विचार किया, यशो वितेने लोकेशु सर्वलोकमलापहम, भगवान का दिव्य यश कितना पवित्र है, सब लोकों के मल को दूर कर देने वाला है और उसमें भी ये द्वारिकापुरी है, सारी रिद्धि सिद्धियों से भरी हुई है। स्वर्ग के उद्यान भी द्वारिका के उद्यान के सामने फीके मालूम देते हैं। ऐसी पवित्र द्वारिका में आकर संपूर्ण देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, हम अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वाणी से आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप भावुक लोगों के हृदय में ध्यान के द्वारा उतरते हैं और उनके कर्म पाश को आप काट डालते हैं। सृष्टि को बना करके भी, इसकी रक्षा करके भी और इसका अपने में लीन करने पर भी आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगता, कारण कि आपका इन तीनों कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वे सुखे अव्यवहिते अभिरतः अनवद्य है, आप अपने स्वरूप भूत सुख के अंदर जो विराजमान हैं। लोगों ने अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए तरह तरह के उपाय किए हैं, परंतु संत महात्माओं के बीच में बैठकर उनके द्वारा जगाए हुए श्रद्धा तत्व से जिन्होंने भक्ति को अपने हृदय में प्राप्त किया है, उस भक्ति से जितना जल्दी अंतःकरण शुद्ध होता है उतना किसी उपाय से अंतःकरण निर्मल नहीं होता। चाहे कितनी विद्या पढ़ लो, चाहे कितनी बातें सुन लो, चाहे कितना ही अध्ययन कर लो, दान तप क्रिया भी, चाहे कितना ही दान तपस्या कर लो, परंतु अंतःकरण की शुद्धि भक्ति से होती है। आपका चरण है सारे अशुभ को समाप्त कर देने में धूमकेतु के समान है। बड़े बड़े महात्माओं ने यज्ञ के अंदर आहुति देते हुए आप ही के इन चरण कमलों की इच्छा की है। कितना दिव्य ये आपके वनमाला का स्वरूप है और हम सब ब्रह्मा आदि आपके उसी प्रकार वश में है जिस प्रकार किसान के वश में बैल रहा करते हैं। आप ही के द्वारा ये संसार बने हैं और हेमम ससर्ष बहिरा वर्णय रूपेतम, ये इतना विराट संसार जो पहले स्वर्णमय अंडे में था उसमें आप ही ने चेतना शक्ति दी, आप ही उसमें प्रविष्ट हुए और आपने अनेक जीवों का निर्माण किया है और इतना होते हुए भी आप जीव बने हुए हैं और जीवों से रहित आप अपने स्वरूप में भी हैं। अर्थान जुसन्न अपि ऋषि का पते न लिप्त है, आप जीव बनकर के विषयों का भोगते हैं परंतु तत्व की दृष्टि से वो वैसा का वैसा अलग ही है और आप भी
तरह तरह के अवतार लेकर भी कैसे निर्लेप रहते हैं। अभी अभी देखो ना, इतना लंबा चौड़ा आपका परिवार है, परंतु आप इन सब से निर्लेप रहे हैं। ये सब आपने इसलिए किया है कि दूसरे प्राणी भी ऐसी निर्लेपता की शिक्षा ग्रहण करें। आनुश्रवम श्रुतिभिरंग रिदमंग संगई तीर्थद्वयम शुचि सदस्त उपस्पृशंति। एक तो आपकी कथा है और एक आपके चरणों से निकलने वाला जल है, गंगा जी है। ये दोनों ही लोगों के मैल को दूर कर देने वाला है, इसलिए आपने दो तरह से यहां तीर्थ उपस्थित कर दिए हैं। अब आपका कार्य पूरा हो चुका है। देखो परीक्षित, देवता लोग सब इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे। आकाश में खड़े खड़े ब्रह्मा जी अपनी तरफ से अलग बात कहने लगे कि महाराज, हम ही लोगों की प्रार्थना से आप पृथ्वी पर अवतार लिए थे, आपने धर्म की स्थापना कर दी है, चारों ओर आपका यश फैल चुका है। हां, दुष्टों का संहार करना ये आपका इतना अभिप्रेत कार्य नहीं था। आपका तो ये कार्य था कि जितने जीव यहां हैं और आने वाले उन सब का कल्याण हो जाए। तो कल्याण के लिए आपने जो लीला की, उस लीला का सब जगह विस्तार हो रहा है। सर्वलोक मलापः, संपूर्ण संसार के त्रिलोकी के मैल इससे नष्ट हो चुके हैं। अब आप पधारिए, आपको अवतार लिए हुए 125 वर्ष हो गया है। यदुवंश भी आपके संकल्प से, ब्राह्मण के शाप के बहाने से अब समाप्त प्राय है। हम सब आपकी अब ऊंचे लोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हे देवादिदेव ब्रह्मा जी, ये निश्चित बात है कि मैंने मेरे अवतार का काम पूरा कर लिया है। भूमेर भारो अवतारित है, पृथ्वी का भार मैंने दूर कर दिया है। फिर भी अभी ये यदुवंशी है, इनके यश को, इनके पराक्रम को कोई भी दूसरा चुनौती देने वाला नहीं है। मैंने अपना समय देख लिया है और गंतास्मि अनेन लोकोयम, और अब बहुत जल्दी यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। और यास्यामि भवनम ब्रह्मन्, और मैं आपके भवन में, मैं अपने भवन में, अपने धाम में चला जाऊंगा। देवताओं से इस प्रकार से कहकर के, देवताओं के साथ भगवान के सामने ऐसी बात कहकर के ब्रह्मा जी अपने धाम में चले गए। ब्रह्मा जी के पीछे पीछे देवता लोग भी चले गए। इधर द्वारिका के अंदर तरह तरह से अपशकुन होने लगे। तो भगवान ने बड़े बूढ़े यदुवंशियों को बुलाया और यदुवृद्धों को बुला करके कहा, देखो भाई, ब्राह्मणों का शाप तो किसी प्रकार टलने वाला है नहीं। द्वारिका में कैसे भयंकर उत्पात हो रहे हैं, तो अपने लोगों को अपना नगर छोड़ करके प्रभास क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। वहां जाएंगे, स्नान करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, पितरों को तृप्त करेंगे और सब प्रकार से हम लोग इस प्रलय से बचने का उपाय करेंगे। और व्रजनानि तरिष्यामो, दान वगैरह देकर के हमारे सब पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सब लोग जाने की तैयारी में हैं। इतने में उद्धव जी महाराज घोर अरिष्टों को देखकर भगवान के पास आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे देवादिदेव, क्या विचित्र आपकी लीला है। आप इस समय में अपनी लीला का संवरण करने जा रहे हैं, लीला को अपने में समेटने जा रहे हैं। ये सब आपका संकल्प ही था, अन्यथा विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन न यदीश्वर है। आप ब्राह्मणों के शाप का प्रतिकार कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप स्वयं भी यही चाहते थे। अब कुछ आप मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने धाम में जाना चाहते हैं नाथ, परंतु मैं आपको आधे क्षण भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। आप मुझे भी साथ ले चलिए। आपने जो पावन लीलाएं की है, जो कानों के द्वारा लोग सुनेंगे और इस अमृत का पान करेंगे, अन्य स्प्रियाम जन त्यजति, उसकी संसार की कोई भी स्प्रिया भी नहीं रहेगी,
इस प्रकार से ये आपकी लीलाएं हुई हैं, हम आपके साथ खेले कूदे, आपके साथ सोए, आपके साथ घूमे, आपके बिना हमको ये संसार कैसे दिखाई देगा, ये संसार हमको बहुत ही सूखा दिखाई देगा, प्रेम से रहित दिखाई देगा, इसलिए हम आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वायु पी पी करके रहने वाले ऋषि मुनि कितना कितना कष्ट उठा करके आपके उस धाम को जाया करते हैं, वे ही हम लोग अपने पाप कर्दम में फंसे हुए केवल आपके स्वरूप का दर्शन करके और आपकी वार्ता सुनकर के हम तर जाएं, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए हम आपके उन हंसी मजाक से भरे हुए वचनों को सुनना चाहते हैं जो आपने यहां लोगों को रिझाने के लिए कहे। हम आपके वो मुस्कुराते हुए मुख को देखना चाहते हैं जिसका ध्यान करने पर मनुष्यों का सारा मैल दूर होता है, और हम आपकी वही कीर्ति गाना चाहते हैं जिसको गागा करके लोगों ने अपना मन और अंतःकरण और वाणी सबको पवित्र किया है। अपने एकांतिक भक्त की ये बात सुनकर के भगवान कहने लगे, देखो उद्धव, ये देवता वगैरह सब आए थे, इन्होंने मुझे बुलाया है, थोड़ा सा एक देवताओं का कार्य बाकी रहा है, इसको और पूरा कर लेंगे, आज के सातवें दिन ये हमारी द्वारका पूरी जलमग्न हो जाएगी, सब प्रकार से यहां पर मंगल है नष्ट हो जाएगा, लोगों में अधर्म बढ़ने लगेगा, ये मैं जानता हूं कि मेरे बाद यहां पर कलयुग धीरे धीरे बढ़कर के सब प्रकार के धर्म के ऊपर अधिकार कर लेगा और अधर्मी अधर्म फैलेगा, ऐसे समय में तुम अपने भाई बंधुओं से स्नेह का त्याग करके अपने चित्त को मुझ में लगाकर सब जगह समान रूप से व्याप्त मैं हूं ऐसा विचार कर पृथ्वी पर घूमो, परंतु याद रखो कि मन से वाणी से इंद्रियों से जो कुछ तुम्हारे ध्यान में आए देखने में आए सुनने में आए, इंद्रियों से जो भी विषय तुम्हारे पकड़ में आए वो सब का सब नश्वर है, माया का बना हुआ है और उसमें तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब तक हमारी बुद्धि में भेद बना रहता है तब तक इस मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं रहती हैं, इसलिए जो संसार हमको दिखने में आता है ये संसार मेरा रूप है, इस प्रकार से तुम समझना, ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर तुम रहना, ऐसे दृष्टि से कोई भी बाधा तुम्हारे सामने नहीं आएगी। देखो जिसका भी त्याग करो दोष बुद्धि से मत करना, और जिसका भी पालन करो वो गुण बुद्धि से नहीं करना। जैसे बालक स्वाभाविक ही मना करने पर किसी काम से रुक जाता है और आज्ञा देने पर उस काम को करता है, वो कोई त्याग में दोष, जिसका त्याग करना है उसमें दोष नहीं देखता, जिसका पालन करता है उसमें गुण बुद्धि नहीं रखता है। इस प्रकार से स्वाभाविक अपने अंतःकरण की निर्मलता के कारण ऐसा व्यवहार करना कि सब प्राणियों के साथ तुम्हारी मित्रता बनी रहे और तुम्हारा जो ज्ञान है और अनुभव है उसमें तुम डटे रहो। और बढ़िया बात तो यही है कि पश्यन् मदात्मकम् विश्वम् न विपद्येत वै पुनः, सारा संसार मदात्मक है, मेरे स्वरूप वाला है, इस बात से तुम क्लेश मात्र भी नीचे मत उतरना, फिर तुम्हारे सामने कोई विपत्ति नहीं आएगी। महाभागवत ने ये बात सुनी तो परीक्षित उस समय में उद्धव के डब डब करके आंसू बहने लगे, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सारे कल्याण के साधनों के स्वामी हैं, इतनी नहीं मनुष्यों के कल्याण करने के जो साधन हैं वे जीवों के द्वारा आपके पास धरोहर के रूप में है रखे हुए हैं, इसलिए आप जीवों की धरोहर, जीवों को आप लौटा दो। हे योग विन्यास, हे योगात्मन, आपने जो इस प्रकार से बताया है कि सारे संसार को मायामय समझ करके तुम इससे असंग हो जाओ, सब जगह मेरे स्वरूप को देखो, महाराज ये कहने में थोड़ी सुगम बात लगती है, परंतु आप मेरे मन को टटोल के देखो कि मैं कैसा हूं,
विषयी पुरुष के मन में कामनाएं की कामनाएं भरी पड़ी रहती हैं, उनको ये संसार नश्वर दिखता हुआ भी प्रिय मालूम देता है, वह इसमें आनंद का आनंद की कल्पना किए हुए है, इस कारण से इसका त्याग करना बहुत मुश्किल है। संसार के पदार्थों में ममता धसी हुई है और शरीर में अहमता धसी हुई है, ऐसी बुद्धि बहुत विकृत हो चुकी है हम लोगों की, तो किस प्रकार से यथा हम संसाधयामी, अपने साधन को किस प्रकार से मैं पूरा कर सकूं कि ये संसार त्वदात्मक है मैं जान सकूं। महाराज, आप जैसा वक्ता खोजने पर भी नहीं मिलेगा, देवताओं में भी नहीं मिलेगा, ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं मिलेगा, जहां कहीं दृष्टि पसार के देखता हूं तो मुझे सब मोहित ही मोहित माया में मोहित ही मोहित दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बड़ा अच्छा अवसर है, मैं आपके चरणों की शरण में आया हुआ हूं। वृदना भी तप्त है, जन्म जन्मांतर के पाप की ज्वाला में जल रहा हूं, मेरी बुद्धि इस समय काम नहीं कर रही है। हे नारायण, आप मनुष्य मात्र के मित्र हैं, मैं आपकी शरण हूं और इस संसार के कीचड़ से मुझे उबारिए, मैं तो मेरी शक्ति से पार नहीं हो सकता हूं, आप ही हाथ पकड़ करके मुझे बाहर निकालिए। भगवान कहने लगे कि प्रायण मनुजालो के लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति यात्मानम आत्मनैवा शुभाशयात। देखो उद्धव, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो संसार से ऊपर उठने में पराधीन हो। हां, उसको लोक तत्व विचक्षण होना चाहिए, कि लोक तत्व विचक्षण माने अपने स्वरूप का ज्ञान हो, जगत का ज्ञान हो और मेरा ज्ञान हो। ऐसे लोगों को अपने ही अशुभ अंतःकरण से ऊपर उठकर अपने ही द्वारा अपने स्वरूप के प्राप्ति के लिए पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले मनुष्य का गुरु है, उद्धारक है, सुधारक है, वह स्वयं ही होता है। क्यों कि जैसा वो इंद्रियों से देखता है और जैसा वो देखे हुए के समान बुद्धि आदि से अनुमान में लाता है, अनुमान से देखता है, उसके द्वारा केवल उसका कल्याण ही होता है। यदि वो सही ढंग से देखे तो कल्याण की दृष्टि से देखेगा तो उसका उद्धार ही होगा। उद्धव, मेरे यहां सृष्टि में बहुत से जीव जंतु हैं, एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, बहुपाद है, बहुत पैर वाले, बिना पैर वाले, बहुत सी सृष्टि है हमारी। उसमें भी तासाम में पौरुषी प्रिया, जो जीव पुरुष शरीर में आता है वह मुझे अतिशय प्रिय लगता है, क्योंकि उस पुरुष शरीर के अंदर मेरी प्राप्ति के जितने हेतु हैं वह उसके अंदर विद्यमान है और वह भी तरह तरह की युक्तियों से मुझे प्राप्त कर सकता है। कहते हैं बुद्धि आदि से प्राप्त हो गए आप, कह नहीं नहीं, ग्राह्य माणई गुणैर लिंगैर अग्राह्यम, मैं बुद्धि आदि जो कि सारे संसार को जानती है, पकड़ती है, उनके द्वारा मैं ग्राह्य नहीं हूं। संसार को तो ये पकड़ लेती है, लेकिन संसार को पकड़ने वाली बुद्धि आदि से जो मैं अग्राह्य हूं, उस मुझ अग्राह्य को भी ऐसी ऐसी युक्तियां हैं जिनके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को स्वयं को अपने विचार से सोचना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, उसके सामने प्रत्यक्ष में जो वस्तु आ रही है, जो भोग आ रहे हैं, इनके विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए, अथवा जो सामने तो नहीं है लेकिन सुना है तो उसके विषय में भी उसको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। इसे विचार करना है, यही अपने आप का गुरु बनना है। इसके विषय में एक बड़ा विचित्र मैं तुमको इतिहास सुनाता हूं, जो इतिहास हमारे पूर्वज यदु से संबंधित है और अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी के साथ संबंधित है। इन दोनों का ऐसा विलक्षण संवाद हुआ है, संवादांतर्गत संवाद है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, ये यदु धर्म के तत्व को जानने वाले थे, उन्होंने सर्वथा निर्भय विचरण करने वाले क्रांत दृष्टा एक युवा अवधूत महापुरुष को देखा। तो यदु ने उनसे पूछा कि हे महात्मन,
आपके पास ऐसा ज्ञान कहां से आया है जिसे प्राप्त करके आप बालकों के समान निर्विकार चेष्टा कर रहे हैं। प्रायः हमने लोगों को देखा है, कोई धर्म के लिए, कोई अर्थ के लिए, कोई कामना के लिए, कोई यश के लिए, कोई लक्ष्मी के लिए, कोई आयु के लिए, किसी न किसी मतलब से दौड़ते हैं, लेकिन आप में किसी प्रकार की कामना नहीं दिख रही है। न तो आप कोई कार्य करते हैं, न कोई चेष्टा करते हैं, एक मूर्ख की तरह से आप विचरण कर रहे हैं। क्या बात है, संसार में तो जहां मैं दृष्टि डालता हूं वहां सब लोग कामना की अग्नि में जलते हुए दिख रहे हैं, और आप ऐसे हैं जिनमें लेश मात्र भी कामना नहीं है। जैसे गंगा जी के प्रवाह के बीच में खड़ा हुआ हाथी ठंडे पानी में रहता है, उसको बाहर का घाम नहीं लगता, बाहर की तपन नहीं लगती, इसी प्रकार से आप निर्विकार रूप से इस संसार में रह रहे हैं। आपके आनंद का कारण क्या है? तो ऐसी बात जब पूछी गई तो हे उद्धव, वे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनयी यदु से कहना प्रारंभ किया कि देखो राजन, मैंने मेरी अकल से बहुत से गुरुओं को बनाया है, और उन गुरुओं से मैंने विचित्र शिक्षा ली है। उस शिक्षा के बल पर मैं निर्भय होकर संसार में फिरता हूं। मेरे 24 गुरु हैं। अब ध्यान से सुने, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 महाभूत हैं। ये 5ों महाभूत दत्तात्रेय के गुरु हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर, समुद्र, पतंगा, शहद बनाने वाली मक्खी, हाथी, शहद लेने वाला हरिण, मछली, पिंगला नाम की वेश्या, कुरर मन चील, छोटा बालक और एक कुमारी कन्या, सांप बनाने वाला सर्प, मकड़ी और एक वो दीवारों में मिट्टी के घरों में रहने वाला भौंरे की आकृति के समान जंतु, ये मेरे 24 गुरु हैं। इन 24 गुरु का अर्थ है कि इनसे मैंने बड़ी विलक्षण शिक्षा ली है। कोई शिष्य भाव से जाकर शिक्षा ली ऐसी बात नहीं, इनके अंदर बड़ा तत्व समाया हुआ है। पृथ्वी केवल चलने फिरने लायक ही नहीं है, सूर्य केवल प्रकाश करने के लिए ही नहीं है, ये हमको बहुत विचित्र शिक्षा देता है। मैं तो कहता हूं राजन, ये जितना संसार है ये सब यदि हम शिक्षा लेने चाहें तो बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। किससे मैंने क्या शिक्षा ली है वह मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली कि देखो, पृथ्वी पर हम कितने प्राणी चलते हैं और कितने हम इसके ऊपर थूकते हैं, गंदगी करते हैं, लेकिन पृथ्वी अपना धैर्य नहीं छोड़ती, पृथ्वी सबको क्षमा करती है। इसी प्रकार से कोई भी प्राणी हमारे साथ हमारे प्रारब्ध के कारण प्रतिकूल व्यवहार करे तो पृथ्वी के समान उसे धैर्य रखना चाहिए, उसे अपने धैर्य को खत्म नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर पर्वत नहीं है, देखो पर्वत है ये अपने सिर के ऊपर वृक्षों को धारण करते हैं ताकि बरसात होवे और बरसात से दूसरे प्राणी तृप्त रहे, जीवित रहे। इसी प्रकार से साधक को चाहिए कि वह दूसरे के लिए कष्ट सहे, उसकी चेष्टाएं दूसरे के लिए हो। शाश्वत परार्थ सर्वे है, सारी की सारी चेष्टाओं से दूसरों को लाभ हो, यह हमने पृथ्वी से सीखा है। मैंने वायु से क्या सीखा कि वायु 2 प्रकार की है, एक शरीर के अंदर रहने वाली वायु और एक शरीर के बाहर यहां
विचरण करने वाली वायु। तो शरीर की जो वायु है जिसे प्राण वायु बोलते हैं, ये भूख और प्यास प्राणों को लगा करती है। तो सूखा जैसा भी टुकड़ा दे दो, सूखा दे दो, बासी दे दो और कैसा भी दे दो, भूख उससे दूर हो जाती है। इसी प्रकार से साधक को चाहिए कि वह खाने पीने के चक्र में अपने ज्ञान को नष्ट न करे, अपने जीवन में उतनी ही वस्तुओं का संपादन करे, उतनी वस्तु अपने पास में रखे जिससे मन विकृत न होवे और बुद्धि विकृत न हो, केवल निर्वाह मात्र होवे। नैव इंद्रिय प्रिय ही, इंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोगों के पीछे नहीं जाना चाहिए। भूख और प्यास के लिए पानी मिल गया, भूख जैसा अन्न मिल गया, भूख दूर हो जाती है, इसी प्रकार से निर्वाह कर लेना चाहिए। और बाहर की वायु से मैंने सीखा है कि देखो कितनी जगह सुगंधित पदार्थ है, कितनी जगह दुर्गंधित पदार्थ है। वो वायु दुर्गंध वाले पदार्थों से भी जुड़ता है, सुगंधी वाले पदार्थों से भी जुड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वायु को देख लो, न सुगंधी रहती उसमें न दुर्गंधी रहती। इसी प्रकार से साधक के पास कितने ही अच्छे बुरे परिस्थितियों से संपर्क करना पड़े, मनुष्यों से संपर्क करना पड़े, कैसे कैसे प्रारब्ध में उसके कर्मों के फल उसके सामने आए, लेकिन न अच्छे से अच्छे के साथ जुड़े और न बुरे के साथ जुड़े। ये हमने वायु से सीखा है। आकाश से मैंने सीखा कि आकाश सब जगह अंदर बाहर सब जगह व्यापक है, तो हो परमात्मा इसी ढंग से सबसे व्यापक है। आकाश में कितने मकान बनते हैं, आकाश में कितनों को आश्रय मिलता है, इसी प्रकार से परमात्मा सबको आश्रय दिए हुए है और परमात्मा सबके आधार है। ब्रह्मात्म भावे न समन्वये न, आकाश से खाली कोई जगह नहीं तो परमात्मा से खाली जगह कोई नहीं। और इतना होते हुए भी आकाश किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद उसमें आकाश नष्ट हो जाता हो ये बात नहीं है। व्याप्त्या अव्यवच्छेदम असंगम, वो सर्वथा निस्संग रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा संसार को बना करके भी संसार से निस्संग रहते हैं। दूसरा मैंने आकाश से शिक्षा ली, देखो आकाश में कितने बदल बनते हैं, कैसी कैसी आंधियां आती हैं, फिर बरसातें होती हैं, बिजली चमकती है, लेकिन आकाश का उससे कोई लेना देना नहीं रहता। ऐसे ही जीवन में कैसी कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, मृत्यु का भी कष्ट आ जाए, तो अभी उसको आकाश के समान निर्विकार रहना चाहिए। जल से मैंने शिक्षा ली कि जल को आप कितना ही गर्म कर दो, थोड़ी देर के बाद वो स्वाभाविक ही ठंडा हो जाता है। जल को ठंडा अलग से नहीं किया जाता, जल की प्रकृति ठंडे रहने की है। और जल के अंदर आप मिट्टी मिला दो, थोड़ी देर के बाद देखोगे मिट्टी नीचे रह गई और जल है, जल स्वच्छ जल है ऊपर रहेगा। कोई तैरने वाली चीज है, तिनका है, घास फूस है, उसको भी देख लो वो ऊपर रह जाएगा, जल स्वच्छ रहेगा। तो जल की स्वाभाविक प्रवृत्ति स्वच्छ रहने की है और वो ठंडे रहने की है और साथ ही साथ मधुर रहने की है। इसी प्रकार से साधक को भी अपना हृदय स्वच्छ रखना चाहिए और शीतल रखना चाहिए। तीर्थ भू और जल है वो तीर्थ होता है, ऐसे ही साधक को भी पवित्र रहना चाहिए। मित्रम इक्षोपस्पर्श कीर्तनई, अरे जब कभी हम तीर्थों में जावें तो उसका स्पर्श करते हैं, जल का भी स्पर्श करते हैं तो शांति मिलती है, ठंडक मिलती है, जल को देखते ही शांति मिलती है। ऐसे साधक को रहना चाहिए कि जिसको देखने से ही शांति मिले। अग्नि से मैंने शिक्षा ली, अग्नि में आप चाहे जैसी वस्तु डाल दो वो अग्नि रूप ही होती है। इसी प्रकार से साधक को कोई चाहे साधक के साथ कैसा ही व्यवहार करे, वह किसी के भी दोष को ग्रहण नहीं करता है। अग्नि के अंदर मैली से मैली चीज डाल दो, अग्नि मैली नहीं होती। इसी प्रकार से साधक को कैसी बुरी परिस्थिति में रख दो, प्रतिकूल परिस्थिति में रख दो, तो अभी प्रतिकूलता का प्रभाव साधक पर नहीं पड़ता। जैसे गंदी चीज डालने पर गंदगी का प्रभाव आग पर नहीं पड़ता है, और जैसे अग्नि तेजस्वी है, साधक को भी तेजस्वी होकर रहना चाहिए, अपने तेज में रहना, साधना के तेज में रहना चाहिए। और तपसा दीप्त, जैसे अग्नि है वो चमकने वाली होती है, ऐसे उसको भी चमकने वाला रहना चाहिए साधन की दृष्टि से। और जैसे अग्नि को कोई दबा नहीं सकता, ऐसे साधक दुर्धर्ष रहे। अग्नि है, कभी प्रकट होती है, कभी छिपी रहती है, ऐसे ही साधक को कोई अच्छे जिज्ञासु मिले तो उनके सामने तो ज्ञान की बात करनी चाहिए, अपने को प्रकट कर देना चाहिए, और जहां जिज्ञासु नहीं है वहां अपने को छिपा करके रखना चाहिए। ये मैंने अग्नि से शिक्षा ली। और स्वमाया सृष्टमिदं सल्लक्षणं विभुः प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपो अग्नि रिवेदसी। भाई देखो, लकड़ी के अंदर आग है और वो लकड़ी जलती है तो आग दिखती ही है। तो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो आग भी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, लेकिन इससे आग टेढ़ी है नहीं, लकड़ी के कारण से ऐसा दिखता है। आग तो अपने ही स्वरूप में है। इसी प्रकार से इस कार्य कारणात्मक जगत में भगवान अपने ही स्वरूप में है। तत्त शरीरों से, तत्त पदार्थों से भगवान की अलग अलग आकृतियां, अलग अलग शरीर दिखते हैं, वास्तव में भगवान इन सबसे विलक्षण है। चंद्रमा से मैंने शिक्षा ली कि चंद्रमा 15 दिन की, चंद्रमा की कलाएं 15 दिन घटती हैं और 15 दिन बढ़ती हैं, तो इनकी कलाएं घटती बढ़ती है, चंद्रमा इसमें घटता बढ़ता नहीं है। इसी प्रकार से जन्म है, मृत्यु है, ये शरीर के ही होते हैं, सुख और दुख है ये बुद्धि में होते हैं, और ये भूख और प्यास प्राणों में ही होते हैं। न तो आत्मा में कभी भूख प्यास आती है और नई आत्मा में कभी भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बात रहती है। नई आत्मा का जन्मना और मरना होता है, लेकिन आत्मा का इसके साथ संबंध होने से दिखता है, ऐसा ही है। आकाश में देखेंगे कृष्ण पक्ष से चंद्रमा कुछ घटता दिखेगा, चंद्रमा नहीं घटता है, कलाएं घटती हैं। तो ये मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली। सूर्य से मैंने शिक्षा ली कि सूर्य है, समय पर पानी खींचता है, पृथ्वी से जल खींचता है और फिर समय पर वो जल देता है। इसी प्रकार से योगी को भी चाहिए, यथा कालम वह कुछ निर्वाह के लिए सामग्री लेता है तो लोगों की सेवा के लिए उसे ज्ञान देना चाहिए, दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। गुणैर गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचति नैतेषु युज्यते योगी गोभीर गा इव गोपति। ये सूर्य की किरणें कितनी गंदी गंदी चीजों के ऊपर भी पड़ती है, लेकिन कभी भी सूर्य की किरणें गंदी नहीं होती है। नालियों पर भी सूर्य का प्रकाश, मलमूत्र पर भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परंतु सूर्य के प्रकाश में कोई गंदगी नहीं आती है। इस प्रकार से योगी को निर्लेप रहना चाहिए। कबूतर से मैंने शिक्षा ली कि संसार में ज्यादा स्नेह किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जिसके साथ हम ज्यादा स्नेह करेंगे उसी का दुख हमको भी भोगना पड़ेगा। मैंने जंगल में देखा एक कबूतर और एक कबूतरी बहुत प्रेम से रहते थे, साथ साथ उड़ना, साथ साथ बैठना, साथ साथ जाना, हर काम वे साथ साथ ही करते थे। थोड़े दिनों के बाद कबूतरी के अंडे हो गए और अब वे अंडे थोड़े फूट गए तो वे छोटे छोटे कबूतरी के बालक अपने घोंसलों में उड़ते थे और बाहर भी आ जाते थे अपने कोठर में से। एक बार की बात है, कबूतर और कबूतरी उन दोनों के लिए खाने के सामान लाने के लिए गए जंगल में, और उधर वो छोटे छोटे बच्चे अपने कोठर में ची ची कर ही रहे थे। उसी वृक्ष के नीचे एक शिकारी ने आकर जाल बिछा दिया। अब वो बच्चे छोटे छोटे कोठर में से फुदकते फुदकते उस जाल में आए, जाल में फंस गए। इतने में कबूतर कबूतरी दोनों आए, उन्होंने देखा कि ओ हमारे बच्चे तो जाल में फंस गए हैं। अब कबूतरी बुरी तरह से रोने लगी, अपने बच्चों को जाल में देख करके इतनी रोने लगी, इतने रोने लगी, वो स्वयं भूल गई कि भाई मैं अपने बच्चों से मिलने जा तो रही हूं लेकिन मैं स्वयं फंस जाऊंगी, इस बात को याद ही नहीं किया। और कोई ऐसी माया थी, क्या बतावे, वो स्नेह की माया में फंसी हुई, स्वयं बच्चों के साथ मिलने के लिए गई, वो भी वहां पर फंस गई। कबूतर ने देखा कि मेरा सारा परिवार इस जाल के अंदर फंस गया है, मेरा सारा घर बार शून्य हो गया है, मेरी स्त्री मेरे बच्चे सब मेरे से अलग हो गए, माने मेरे से बिछुड़ गए, अब मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करूं। ऐसा करके वो भी अपने कबूतर और बच्चों के, कबूतरी और बच्चों से मिलने के लिए गया, अर्थात उनके पास में गया, तो वो भी फंस गया। इधर शिकारी को इन तीनों पर भी दया नहीं आई, न तो कबूतर पर आई, न कबूतरी पर आई, न बच्चों पर आई। उसने देखा तो मेरा तो काम बन गया, जाल के अंदर फंसे हुओं को लेकर के सबको ले गया। तो मैंने विचार किया कि ये संसारी लोग ऐसे ही काल चक्र में सब फंसते हैं। एवं कुटुंबी अशांतात्मा द्वंद्वा राम पतत्रिवत, पक्षी के समान यहां फंस जाते हैं, कुटुंब के भरण पोषण में लगते हैं और इसके अलावा कोई उनको काम सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, और वे उसके अंदर फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और मर जाते हैं। इसलिए मैंने ये शिक्षा ली कि भाई मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, यह तो मुक्ति का खुला हुआ दरवाजा है, इसमें सामान्य पशु पक्षियों के समान हमको घर गृहस्थ के काम में फंसना नहीं चाहिए, और यदि कोई फंसता है तो बहुत ऊंचे से नीचे गिरता है और उसका पतन होता है। देखो यदु महाराज, मनुष्य को मिलने वाला सुख है वह उसको नरक में भी मिल जाएगा, और मिलने वाला दुख है वह उसको स्वर्ग में भी मिल जाएगा। इसलिए मनुष्य को कभी भी सुख की प्राप्ति के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। देखो कोई आदमी दुख को नहीं चाहता है, लेकिन दुख आता है कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थिति कोई नहीं चाहता, फिर भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हमारे भाग्य में अनुकूल परिस्थिति लिखी हुई है, उसको कौन टाल सकता है? वो भी आकर के रहेगी। हमारे लिए जो परिस्थिति बन रही है वो तो हमारे ही तो पास आएगी, जो हमारे भाग्य में वस्तु भगवान ने बनाई वो हमारे ही पास आएगी, दूसरे के पास जा नहीं सकती, दूसरे के पास रह नहीं सकती। ऐसा विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति को संसार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मैंने अजगर से देखा, एक अजगर को देखा जंगल में, वो अजगर है पड़ा रहता है, बहुत भारी शरीर वाला, इधर उधर जा भी नहीं सकता, कभी उसको थोड़ा कभी उसको ज्यादा खाने को मिलता है, जैसे भी मिल जाता है उसका काम चलता है, लेकिन अजगर है अक्रिय है, अपनी तरफ से खाने पीने की कोई चेष्टा नहीं करता, पड़ा रहता है एक तरफ। तो हमने देखा कि ओहो, जो परमहंस कोटि के साधक है उन साधकों को भी अपने निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति के लिए भी नहीं जाना चाहिए, एक जगह पड़े रहना चाहिए और जैसा मिल जाए उससे उसको अपना निर्वाह कर लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य में लिखी हुई अपने आप वस्तु आएगी। मैंने समुद्र से शिक्षा ली है कि समुद्र जैसे बहुत गहरा होता है, ऐसे ही साधक को भाव दृष्टि से बहुत गहरा होना चाहिए। समुद्र को कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे ही साधक के ऊपर विषय है वो विजय प्राप्त नहीं करें, विषयों विषय उसके ऊपर तैर न जाए, वो विषयों को अपने अंदर समाहित करने वाला हो। और सागर जैसे क्षुब्ध नहीं होता है, ऐसे साधक को भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। देखो कितनी नदियां आती सागर में, लेकिन सागर में कभी बाढ़ नहीं सुना, समुद्र में बाढ़ नहीं सुनी, नदियों में बाढ़ आती है, कभी कभी तालाब के किनारे फूट जाते हैं, लेकिन समुद्र है उसमें बाढ़ नहीं आती। और भयंकर गर्मी पड़ती है, तालाब सूख जाते हैं, नदियां सूख जाती है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं देखा होगा कि समुद्र भी सूख गए। ऐसे ही साधक के सामने कितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो हर्षित नहीं होना चाहिए, और कितने ही उसके सामने प्रतिकूल आ जाए तो शोक नहीं करना चाहिए, समुद्र के समान गंभीर रहना चाहिए और विषयों से अभिभूत नहीं होना चाहिए। पतंगे से मैंने शिक्षा ली कि संसार में बाहर चमकने वाली चीजों के अंदर फंसना नहीं चाहिए। ये सोना और स्त्री, कंचन और कामिनी, ये दो ऐसे हैं कि जिनके बाहरी रूप को देखकर दुनिया फंस जाती है। तो जैसे पतंगा आग को देखता है, देखा हा चमकने वाली आग है, उसकी केवल चमक को देख करके उसके अंदर आ पड़ता है, फिर जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे ही साधक कनक से माने सोने से और कामनी से सावधान रहे, इनके बाहरी चमक धमक में आ जाओगे तो पतंगे की तरह से देखते देखते ही तुम्हारा भी नाश हो जाएगा, इसलिए मैं इनसे दूर रहता हूं। पतंगे से मैंने शिक्षा ली। मैंने भौरे से शिक्षा ली, नहीं मैंने उस मधुमक्खी से शिक्षा ली कि जो मधुमक्खी पुष्पों पर जाकर के उनका रस लेती है और न कोई वो रस इकट्ठा करती, जैसे जितना वो ले लेती ला करके वो छत्ते में रख देती है, तो मनुष्य को चाहिए कि कभी भी किसी प्रकार से संग्रह के अंदर न जावे, क्योंकि वो जैसे रस लेती है ला करके छत्ते में रख देती है स्वयं नहीं खाती, इसी प्रकार क्योंकि वो भौर वो शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है, ऐसे ही साधक यदि संसार की चीज वस्तुओं को बटोरने में लगा रहेगा न तो वो किसी को दान देगा और न स्वयं उसका उपभोग करेगा, बड़े दुख से जो धन संचित किया है वो न जाने कौन खाएंगे और उसके पीछे किया हुआ पाप है वो हम खाएंगे। देखो धन को इकट्ठा करने में जितना पाप करते हैं वो पाप का फल तो इकट्ठा करने वाला खाएगा और धन जितना इकट्ठा होता है वो न जाने कौन खाएगा, पता नहीं है कितना ये अंधेरा छाया हुआ है। अब ये मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, वो स्वयं तो शहद खाती नहीं, शहद कोई दूसरा ही खाता है और इधर उधर शहद लाने का जो परिश्रम है वो उनको करना पड़ता है। मैंने हाथी से शिक्षा ली कि भिक्षु को कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जैसे हाथी को बांधना बड़ा मुश्किल है लेकिन कागज की हथनी बनाकर उसको एक खड्डा खोदकर ऊपर मामूली सी लकड़ियां रख करके उसको रख देते हैं कागज की हथनी को, अब वो हाथी आता है हथनी समझ करके और जो ही वहां पैर रखता है हथनी तो है नहीं और खड्डे में जाकर वो फंस जाता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं गिर जाता है खड्डे में। इसी प्रकार से मनुष्य को इनसे दूर रहना चाहिए। मैंने हरिण से शिक्षा ली है, हरिण देखो कितना उछल कूद करके आदमी के सामने देखते देखते दूर चला जाता है, लेकिन जिस जब हरिण को पकड़ने वाले शिकारी पूंगी बजाते हैं मीठा शब्द करते हैं तो वो वही रुक जाता है, इतने में उसके बाण लगा देते हैं और उसको मार देते हैं। तो साधक को क्या चाहिए कि संसार की ज्यादा बातें नहीं सुननी चाहिए, भोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नाचने गाने की बातें इनको नहीं देखना चाहिए, यदि इनके खिलौने बन करके रहोगे तो ऋषि सिंह की तरह से फंस जाओगे। तो ये मैंने हिरण से शिक्षा ली। मछली से मैंने शिक्षा ली है, मछली का पकड़ना बहुत मुश्किल है, जाल भी है वो पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है और मछली तो कितने नीचे जा सकती है, उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन मछली के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है वो खाने का लोभ रहता है तो मछली पकड़ ली जाती है। मछली पकड़ने वाले अपने जाल के अंदर जो खीले हैं उन खीलों के अंदर मांस लगा देते हैं, मांस लगाने के कारण से अब वो मछली दौड़ी दौड़ी आती, देखा कि आह कुछ खाने को मिलेगा, जाकर उस कांटे के ऊपर मुंह लगाते हैं वो फंस जाते हैं, खाने को टुकड़ा तो मिलता नहीं स्वयं मर जाते हैं। मृत्यु मृच्छति असद बुद्धि मीनस्तु बड़ी शैर्य था। इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी जीभ के ऊपर बहुत कंट्रोल करना चाहिए, यदि अपने जिह्वा के ऊपर कंट्रोल है तो सब इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा, और जिह्वा पर खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो किसी इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं हो सकता। तो जितेंद्रिय की पहचान क्या है कि न जायेद रसनम यावत, जब तक उसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त नहीं किया है तब तक वह अजितेंद्रिय है, और जितम सर्वम जिते रसे, और जिह्वा पर विजय प्राप्त कर ली तो सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि इंद्रियों को पुष्टि मिलती है प्राणों से और प्राणों को पुष्टि मिलती है खाने पीने से। अब खाने पीने पर जिसने नियंत्रण कर लिया तो वो सब पर नियंत्रण कर लेगा। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, उससे जो मैंने सीखा है हे यदु उसे तुम सुनो, बड़ी सावधानी के साथ सुनो। किंचित निबोध नृपनंदन, कहते हैं कि वो एक वेश्या थी, पिंगला नाम की वेश्या, वो विदेह नगर में रहती थी। एक बार की बात है, वो अपने मकान पर बैठी हुई थी, बाहर आने जाने वाले व्यक्तियों को इशारा कर रही थी, कोई उसके पास आए नहीं, और वो कभी अंदर जावे कभी बाहर जावे बहुत देर तक कोई नहीं आया। इधर रात होने वाली है तो उसको नींद भी नहीं आई। अब वो इधर उधर मकान के अंदर बाहर गई तो निर्गच्छन्ति प्रविशति निशीथम सब पद्यते, तो ऐसे करते करते उसकी रात बीत गई। जब उसके मन में तो यही था कि कोई आवे हमको पैसा देवे, कोई आया नहीं पैसा दिया नहीं, तो उसके मन में बहुत वैराग्य हुआ। अब वो जो वैराग्य हुआ है राजन, वो वैराग्य बहुत ही श्रेष्ठ बात को बताने वाला था। ये वैराग्य होता है यदु, ये आशा के पास को काटने का सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़े तलवार है। जब तक मनुष्य को वैराग्य नहीं होता है तभी तक मनुष्य ममता के गांठ में फंसा रहता है, और जब वो वैराग्य करता है तो कभी किसी की कभी कहीं पर भी उसकी कहीं ग्रंथि रहती ही नहीं। तो पिंगला से मैंने शिक्षा ली तो उसको निर्वेद हुआ, ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? वो देखने लगे कि ओहो, मेरा अज्ञान तो देखो, मैं दूसरे से प्रेम करती हूं लेकिन मेरे से कोई प्रेम करने वाला है इस बात को मैं समझी नहीं। मेरे से जो प्रेम करने वाला है वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझसे प्रेम करने वाला मेरे ही पास है। कितना पास में है जी? और वो तो इतना पास में कि वो तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। तो क्या आपके बुलाने से बैठा है? नहीं नहीं, वो तो स्वतः ही बैठा हुआ है, अपने आप आए बैठ गया, अपने आप ही मुझसे प्रेम करता है। तो क्या वो प्रेम करने वाला तुमको सदाई मिला रहता है? कि वो तो मुझे सदाई मिला रहा है नित्यम। और दूसरे जो बाहर के प्रेमी जिनको मैं ढूंढ रही हूं उनमें कोई ऐसा प्रेमी नहीं जो सदा मेरे से प्यार कर सके। मेरे हृदय में रहने वाला जो मेरा प्रेमी है वो सदा ही मुझे प्यार देता है, और दूसरे जो मेरे प्रेमी है बाहर वाले ये अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं, और मेरे हृदय में रहने वाला जो प्रेमी है असली प्रेमी वो अपने स्वार्थ से नहीं, वो मेरे स्वार्थ के कारण से प्रेम करता है। ओहो, अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छम अहम भजेज्ञा। मेरी मूर्खता तो देखो कि जो मेरी बात पूरी न कर सके और जो स्वयं भी अपने मन की बात पूरी न कर सके ऐसों को मैं पति बनाने जा रही हूं, और मेरा पति मेरे पास है उसको मैं भूल गई हूं। किसके पीछे? एक शरीर के पीछे। आखिर शरीर क्या है? शरीर तो मलमूत्र का एक भांडा है और कुछ नहीं है। इसके अंदर हड्डियां हैं, वो तो थूथ का काम कर रही हैं, और ये नाड़ियां हैं, ये मूंज का काम कर रही हैं। केवल त्वचा से ऊपर इसके प्लस्तर हो गया है कि भीतर क्या है दूर से दिखता नहीं है, लेकिन इसके अंदर धन क्या है, शरीर के अंदर असली चीज क्या है कि नवो दरवाजों से निकलने वाला मैल है, यही शरीर का असली धन है। और इसी शरीर की तृप्ति के लिए मैंने देखो आज तक अपना जीवन विदेह नगर में रह करके भी कैसे पाप में व्यतीत किया है। मैंने अपने प्रेमी को भुला करके महान अनर्थ किया है। नहीं नहीं, अब तो मैं अपने वास्तविक प्रेमी के साथ ही रहूंगी, क्योंकि वो मुझे वास्तविक प्रेम देने वाला है। ये दुनिया के प्रेमी है, ये आद्यंत अवंत है, ये हमारे सामने नष्ट होने वाले, पैदा होने वाले हैं। इसलिए देवता भी मेरे लिए ऐसे प्रेमी नहीं हो सकते, मनुष्य भी नहीं हो सकते, और कोई नहीं हो सकते। वो हमारा प्रेमी तो भगवान विष्णु है, वही हमारा सच्चा प्रेमी है, हृदय से हमको चाहता है। उसी विष्णु भगवान की कृपा से देखो आज मेरे मन में इंसाफ से वैराग्य हुआ है। मेरे जैसे मंद भागी वेश्या के लिए भी जब भगवान इतना प्रेम करके मुझे वैराग्य दे सकते हैं, तो जो व्यक्ति प्रेम से उसका भजन करते हैं उनको भगवान क्या देते हैं वो तो भगवान ही जान सकते हैं। संसार कूपे पतितम, मैं तो संसार कूपी कुएं के अंदर गिर रही थी और विषयों के अंदर अभिभूत थी, कालाग्नि ने मुझे ग्रस्त कर लिया है। ऐसे समय में आकर मुझे वैराग्य की शिक्षा देकर बचाए हैं, ऐसे विष्णु के साथ में प्रेम नहीं की, कैसी मैं कृतज्ञ रही हूं। अब मुझे किसी से ही प्रेम नहीं करना है, एक विष्णु से प्रेम करना है। राजन, मैंने उस वेश्या से शिक्षा ली कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। ये संसार में आशा रखने का अर्थ है अनेक दुखों का निमंत्रण देना, अनेक दुखों को निमंत्रण देना है संसार से आशा रखना। इसलिए संसार से किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आशा पूरी करने वाले नहीं और पूरी कर सकते नहीं है। और नैराश्यम परमम सुखम, संसार से आशा नहीं रखना यही बहुत उत्तम सुख का कारण है। आशा रखेंगे तो दुख मिलेगा और आशा नहीं रखेंगे तो हमको महान आनंद की उपलब्धि होगी, यह मैंने पिंगला से सीखा। जब तक उसने लोगों से आशा रखी तब तक उसको कोई सुख देने वाला नहीं मिला, और ज्यों ही उसने संसार की आशा का त्याग किया, लोगों की आशा का त्याग किया, तो बड़ी शांति मिली, अंदर जाकर के सो गई, बहुत उस आनंद से रहने लगी वो। तो भाई राजन, संसार में आशा किसी से नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं ये लोग धन संग्रह के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, परंतु भाई परिग्रहो अति दुखा है, ये बहुत दुख के लिए है। जितना हम संग्रह करते हैं, हम तो देखते हैं कि संग्रह से हम लोग आगे अपना काम निकाल लेंगे, परंतु काम तो देखो भाग्य से चलने वाला है, और संग्रह के ऊपर हमारी बुद्धि अटक जाएगी तो न तो भगवान के विधान पर भरोसा है, न हमारे भाग्य पर भरोसा है, न स्वयं भगवान पर ही भरोसा है, और न अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। एक संग्रह पर भरोसा रहेगा तो बुद्धि बहुत संकुचित हो जाएगी। इसलिए परिग्रह है, ये दुख देने वाला है, इस बात को जो समझ लेता है वो अनंत सुख को प्राप्त करता है। मैं तो ये कहता हूं कि हे यदु, जिसके पास जितनी सामग्री कम है उसको यही सोचना चाहिए कि उतना ही हमारे पास संकट कम है। किसी आदमी के शरीर पर बहुत ज्यादा कीचड़ लगा हुआ है और वो ये समझे कि देखो हमारे समान कौन भाग्यशाली है, तो ऐसा समझने वाला महान मूर्ख है। कितना कीचड़ लगा है तुम्हारे, कीचड़ का घमंड करते हो? ऐसे ही संसार के जितने ज्यादा जिसके पास भोग साधन है, समझना चाहिए उसके पास उतना ही ज्यादा कीचड़ है, कीचड़ में सना हुआ है, और उसका भी कोई अभिमान करता है तो भाई उसकी बुद्धि की बलिहारी है, उसके आगे वो सोचता ही नहीं है। मैंने देखा कि परिग्रह नहीं रखना चाहिए। एक चील को देखा, उस चील के पास मांस का टुकड़ा था। उस समय में जिनके पास मांस का टुकड़ा नहीं था, न जाने कितनी चीलें आई और आकर के उस चील के ऊपर झपटने लगी, मांस को लेने के लिए तरह तरह से ऊपर नीचे उड़ उड़ करके कोसने लगी। वो बिचारी घबरा गई तो उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो सब चीलें उस मांस के टुकड़े पर आई। उसको किसी ने भी आकर के फिर चौंस से एक पंजे से एक मारना नहीं मारा। तब विचार किया कि ओहो, ये परिग्रह रहता है, तब इस परिग्रह पर सबकी दृष्टि रहती है। बहुत ज्यादा बेटे के पास धन तो माँ बाप भी चाहेंगे, स्त्री भी चाहेगी, बेटा भी चाहेगी, भाई भी चाहेंगे, बहन भी चाहेंगे और कुटुंबी भी चाहेंगे, और जब उसके पास कुछ नहीं होता तब उसको कोई नहीं चाहते, आराम से रहता है। तो ये मैंने देखा कि परिग्रह होता है, बहुत दुख देने के लिए होता है। मैंने छोटे से बालक से शिक्षा ली कि देखो छोटा सा बालक है, कोई उसके सामने थोड़ा सा मुस्कुरा दो और उसको गोदी में ले लो, वो मुस्कुराते हुए हंसते हंसते गोदी में आ जाएगा। थोड़ी देर बाद उसका अपमान कर दो तो वो वापिस चला जाएगा, और फिर उसके पास तुम हंसने लग जाओ तो फिर वो वापिस आ जाएगा। उस बालक के मन में ये भावना ही नहीं है कि ये अभी मेरी तरफ आंख निकाले थे, मैं इनकी तरफ क्यों जाऊं। उसको न तो मान से और न अपमान से मतलब, मान से भी मतलब नहीं, अपमान से मतलब नहीं। थोड़ी देर मीठा दे दिया तो वो आ गया, खा लिया, और नहीं दिया उसको छोड़ दिया तो चला गया। अरे ऐसे हमको मान अपमान से ऊपर रहना चाहिए बालक के समान। बालक अकेला ही खेलता रहता है, कुछ गुनगुनाता रहता है, अकेला खेलता रहता है, आत्मक्रीड़ा है। तो साधक को भी चाहिए कि वो अपने आप में ही खेले, अपने आप से ही प्रेम करे बालक की तरह से। तो भाई दो व्यक्ति बहुत आनंद में रहते हैं। अभी जैसे प्रवचन में सुनाई, द्वैव चिंतया मुक्तौ, दो ही बड़े श्रेष्ठ हैं चिंता से मुक्त रहने वाले। कौन? कि परमानंद आपलुताओ, उन्हीं को परमानंद मिलता है। कौन? कि यो विमुग्धो जड़ो बालो, और यो गुणेभ्य परंगत है, जो गुणों से ऊपर उठ गया एक तो वो आदमी, और या एक वो बहुत ज्यादा जो मूर्ख है वो। ये दो ही व्यक्ति संसार में सुखी है। मूर्ख को तो पता नहीं है, और प्रकृति से ऊपर जो हो गया उसको पते की जरूरत ही नहीं है, दो को ही आनंद मिलता है। बालक से मैंने ये शिक्षा ली कि इनसे ऊपर रहना चाहिए। कुमारी कन्या से मैंने शिक्षा ली कि ज्यादा लोगों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्वभाव की टकराहट के कारण से खलबली मचती है। क्या हुआ कि एक कुमारी कन्या थी, उसके घर पर लोग आए थे कन्या को देखने के लिए। उस समय में वो कन्या उनके स्वागत के लिए धान कूटने लगी, धान कूटने लगी तो उसके हाथ के अंदर चूड़ियां थी, उन चूड़ियों की खनक खनक की आवाज आवे। तब देखा कि भाई ये चूड़ियां बोल रही हैं और मैं धान कूट रही हूं, तो धान कूटना उस अतिथियों के लिए धान कूटने का अर्थ है कि इस घर के अंदर दरिद्रता है। तो भाई ये चूड़ियां उतार उतार करके रखती गई तो दो दो चूड़ी रहने दी अपने एक एक हाथ में, फिर धान कूटने लगी तो फिर जो है वो आवाज आई चूड़ियों की, तो फिर एक एक चूड़ी उतार करके रख दी। तब मैंने देखा कि ओहो, जब दो व्यक्ति भी पास पास में रहते हैं तो उनका भी स्वभाव आपस में टकरा जाता है, तो बहुत आदमी रहेंगे तब तो भाई बड़ा भारी कलह होगा और भवेद वार्ता द्वयोरपि। जो मुनि एकांत में रहना चाहते हैं, केवल आत्मचिंतन में रहना चाहते हैं, उसको उसको बिल्कुल एकांत में ही रहना चाहिए। तस्मात कुमारिया एव कंकण है, एक एव चरित तस्मात, अकेले रहना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले से शिक्षा ली कि मनुष्य को अपने मन को वश में करना हो तो अपने आसन को जीतना चाहिए, माने जिस आसन से बैठा है उस आसन से कई देर तक बैठे रहना चाहिए, श्वास को जीतना चाहिए, वैराग्य और अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, अपने ध्येय के ऊपर हे यदु, जब ये मन टिका रहता है तो इस मन के अंदर कितने ही कर्म रेणु है, कर्म के कई मिट्टी कण है, तो वो कर्म की रेणु एकदम शांत हो जाती है। लोग शास्त्रों में बताते हैं ना कि ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान क्यों करना चाहिए कि यदि ध्यान नहीं करेंगे परमात्मा का तो हमारे मन के अंदर कितने ही कर्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, वो संस्कार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे पानी के अंदर मिट्टी के कण घूमते रहते हैं तो पानी ग्रहण करने लायक नहीं होता, और जब वो जल को हम शांत रख देते हैं तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से जब ध्यान करते हैं तो हमारे जितने कर्म के कण हैं वो कर्म के कण नीचे बैठने लगते हैं और अंतःकरण हमारा स्वच्छ होने लगता है। सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाण उपेत्य निंदनम, फिर जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो ज्यों ज्यों सत्वगुण की वृद्धि होती है त्यों त्यों रजोगुण और तमोगुण का नाश होता है, और ज्यों ज्यों रजोगुण तमोगुण का नाश होता है त्यों त्यों मन में शांति मिलती है। और लोग कहते हैं शांति नहीं मिलती तो भाई भगवान का ध्यान कितना करते हो, तो भाई ध्यान तो हम नहीं करते, मन हमारा लगता नहीं। अब मन लगे बिना तो ध्यान नहीं करते और ध्यान किए बिना मन को शांति नहीं मिले, अब इस अधेड़ बुन में आदमी की जिंदगी निकल जाती है। वो देखता है कि पहले मुझे शांति मिले फिर मैं ध्यान करूं, भगवान कहते हैं कि भाई पहले ध्यान करो फिर तुमको अपने आप शांति मिलेगी, तुम्हारे मन के अंदर जो कीचड़ है वो अपने आप बैठ जाएगा, उधर वो ध्यान नहीं देते। तो वो जो बाण बनाने वाला था उसका ध्येय था कि मैं बाण की जो आगे की नोक है इसको मैं तीखी कैसे करूं, तो वो उसको तीखे करने के लिए उसकी धार बनाने के लिए लगा हुआ था। अपने आसन पर बैठा हुआ हिला डुला नहीं, हिलेगा डुलेगा तो उसका निशाना नहीं बनेगा। तो तदैव आत्मन्यवरुद्ध चेतो नवेद किंचित बहिरंतरम वा, तो जब वो बाण बनाने वाला एक सीध में उसके नोक को तीखा करने लगा तो उस समय में उसको बाह्य विषय का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। उस बाण बनाने वाले व्यक्ति के घर के पास से एक धूम धमाके के साथ राजा की सवारी निकली, लेकिन वो अपनी जगह बैठा रहा, उसको कुछ भी पता नहीं कि राजा की सवारी निकली। मैंने उस बाण बनाने वाले से पूछा कि अरे अभी राजा की सवारी निकली थी, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के बाहर आ गए, कोई झरोखों में से देखने लगे, तू यहां बैठा ही रहा, तेरे झरोखों में से तो सुनाई देता ही था शब्द और दिखाई भी दे सकता था। उसने कहा कि महाराज क्या यहां से राजा की सवारी निकली, अरे इतने आदमी निकले सवारी निकली कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तब मैंने विचार किया कि जो अपने आप में अपने चित्त को रोक लेता है उसको बाह्य जगत का भान ही नहीं रहता, बाह्य वृत्ति से शून्य होता है और वो अपने अंदर ही अपने स्वरूप की स्थिति में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सर्प से मैंने शिक्षा ली कि अकेला ही रहना चाहिए और कम बोलना चाहिए, और ज्यादा घर बनाएंगे तो ज्यादा दुख होगा। जैसे सर्प का काम चलता है ऐसे अपना भी काम चलेगा। एक तो अजगर है एक सर्प है, दोनों अलग अलग है। अजगर तो बहुत मोटा ताजा एक जगह पड़ा रहने वाला, ये सर्प है घूमने फिरने वाला। कहते हैं सर्प का कोई अपना बनाया हुआ घर नहीं होता, वह दूसरे के घर के अंदर ही रह रह करके अपना काम निकाल लेता है। ऐसी जो विरक्त महात्मा है, जो संसार से ऊपर उठे हुए, उन लोगों को चाहिए कि वे कोई आश्रम के या घर गृहस्थ के चक्कर में न पड़े। गृहारंभ है अति दुखा है, वो बहुत दुख देने वाला होता है, उसकी व्यवस्था करो, बनाने में दुख और व्यवस्था में दुख। इसलिए और विपलष्ट अध्रुवात्मन है, जिंदगी कितने दिन की है कोई पता नहीं, प्रयत्न करेंगे वो हमारा सब निष्फल होगा। इसलिए ऐसे विरक्त महात्मा को तो ऐसे ही कहीं जंगल में पड़ी हुई स्वाभाविक बनी बनाई कोई झोंपड़ी है, किसी का मकान है, वहां पर रह के अपना निर्वाह कर लेना चाहिए। और मकड़ी से मैंने शिक्षा ली कि मकड़ी है वो अपने में से लार निकाल करके एक जाला बनाती है और जाले के अंदर वो स्वयं रहती है। इसी प्रकार से एक पहले भगवान नारायण थे इस कल्प के आदि में, एक भगवान ही भगवान थे, न उनमें उस समय में कोई दूसरी चीज नहीं थी, कोई जगत नहीं था, न कारण था, न कार्य था, न प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था, केवल भगवान थे जैसे मकड़ी थी। और जब मकड़ी ने अपने में से लार निकाली और जाला बनाया, ऐसे ही भगवान भी स्वयं आया अपनी माया से और काल कलया काल शक्ति के द्वारा इस संसार को उन्होंने बनाया। जैसे मकड़ी है वो जाल में रहती है, ऐसे ही भगवान संसार को बना करके संसार के अंदर रहते हैं। हाँ, भगवान के रहने का तरीका कुछ और है, भगवान संसार में भी रहते हैं, संसार से बाहर भी रहते हैं, वे मकड़ी के समान यूं फंसते नहीं है। लेकिन जैसे मकड़ी अपने ही लार से जाल बनाती है, भगवान भी अपनी माया से इसको बनाते हैं और बना करके भगवान इसमें रहते हैं। और केवलानुभवानंद संदो है निरुपाधिक, और वे भगवान उपाधि रहित तो होकर के अपने ही आनंद स्वरूप में रहते हैं। कोई भगवान की उपाधि नहीं, कोई माया की उपाधि नहीं, कोई प्रकृति की उपाधि नहीं, न माया के कार्य की भगवान के यहां उपाधि है, भगवान निरुपाधिक है। और वे भगवान संसार को तीनों गुणों के द्वारा बना लेते हैं। और जैसे मकड़ी सब फिर जाले को अपने में समेट लेती है, ऐसे ही भगवान भी तमोगुण के द्वारा इसको समेट करके अपने अंदर लीन कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने मकड़ी से भगवान के विषय में कल्पना की। और मैंने मिट्टी के घरों में रहने वाले जो छोटे छोटे जंतु, भंवर के आकृति वाले जंतु हैं, उनसे मैंने शिक्षा ली कि मनुष्य जिसका भी स्मरण करता है वह उसी की आकृति वाला हो जाता है, उसके गुणधर्म उसमें आ जाते हैं, ध्येय का गुणधर्म ध्याता में आ जाता है, गुरुजनों का गुरुत्व है वो शिष्यों में उतर जाता है, स्नेह से, द्वेष से, भय से जिसका भी वो चिंतन करता है वो उसके स्वरूप वाला हो जाता है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को शिक्षा दी तो भरत जी महाराज जिस समय में राम जी के पास आ रहे थे तो माताओं ने देखा कि निषाद राज क्या है, ये तो साक्षात लक्ष्मण ही है। उनको लक्ष्मण की याद आई, क्योंकि लक्ष्मण से शिक्षा लेने के कारण निषाद राज ने लक्ष्मण का चिंतन किया तो लक्ष्मण का स्वरूप उसमें आ गया। ऐसे ही जो शिष्य जिन गुरुजनों के चरणों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन गुरुजनों का प्रभाव, उनकी चाली ढाली, बोल चाल, व्यवहार उस शिष्य में अपने आप ही उतरता है और अनुमान लगा लिया जाता है कि ये उनके पास रहे हुए हैं।